पृष्ठ संख्या 47 तुलसीदास। तुलसीदास के परिदृश्य पर आने तक हिंदी कविता पूरी तरह संपन्न हो चुकी है। विधान और शैली, काव्य भाषा तथा संवेदना सभी दृष्टियों से इसे फिर आगे विकसित करने के लिए एक और संपन्नतर रचनाकार व्यक्तित्व की अपेक्षा थी। तुलसी सभी स्तरों पर इस आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। भक्ति से कविता बनाने की जो प्रक्रिया कबीर से आरंभ हुई, उसकी एक सहज निष्पत्ति तुलसी में मिलती है। कबीर ऊपर से अक्खड़ पर अंदर से भोले और सरल हैं। तुलसी ऊपर से विनयी पर अंदर से जटिल और व्यवहार कुशल। संस्कृत को छोड़कर फिर संस्कृत की शास्त्रीय परंपरा का निर्वाह किस तरह हो सकता है, तुलसी का काव्य इसका बढ़िया उदाहरण है। शास्त्रीयता को लोक ग्राह्य कैसे बनाया जाए, यह तुलसी की मुख्य रचना समस्या है, जिसमें वे हर दृष्टि से सफल हुए हैं। भाखा में काव्य रचना करके वे लोक में प्रिय होते हैं और शास्त्रीय मर्यादा का निर्वाह करके क्रमशः पंडितों में। प्रबंध और मुक्तक, मुक्तक की विविध शैलियाँ, काव्य भाषा के दोनों प्रमुख आधार अवधि और ब्रज भाषा, संस्कृत के प्रति आरंभिक श्लोकों की रचना करके सम्मान प्रदर्शन और फिर भाखा में रचना जिसमें संस्कृत की यथावश्यक मिलावट रहे, वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति पूरा सम्मान पर उसके लिए कट्टरता नहीं, सगुण में आस्था किंतु निर्गुण सगुण के अभेद पर बल, सांस्कृतिक संकट के ऐसे सघन समय भी तुलसी की जैसी भरपूर व्यवस्था अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकती। पूरी रचना में कहीं कोई स्खलन है तो वह मानो उदाहरण के तौर पर अपने चरित नायक के चरित्र की ही तरह, जिसके संबंध में चरित, चरित नायक और चरितकार के शीर्ष समीक्षक आचार्य शुक्ल ने लिखा है, राम के चरित्र की इस उज्ज्वलता के बीच एक धब्बा भी दिखाई देता है, वह बाली को छिपकर मारना है। वाल्मीकि और तुलसीदास जी दोनों ने इस धब्बे पर कुछ सफेद रंग पोतने का प्रयत्न किया है, पर हमारे देखने में तो यह धब्बा ही संपूर्ण रामचरित को उच्च आदर्श के अनुरूप एक कल्पना मात्र समझे जाने से बचाता है। यदि एक यह धब्बा न होता तो राम की कोई बात मनुष्य की सी न लगती। शील निरूपण और चरित्र चित्रण। तुलसी के रचनात्मक चरित्र में यह निरंध्रता उनके चरम आदर्शात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप है और ऊपर से कहना यह कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, अब यह या तो प्रच्छन्न अहंकार है या फिर भक्ति के सघनतम रूप में विलीन अहम भाव। वह भक्ति कैसी होगी जो इस कोटि के अहम का विलीनीकरण कर सके। रचना और भक्ति दोनों की प्रक्रियाएं इस विलीनीकरण में लगती हैं। भक्त कवि बार बार अपने को सबसे बुरा, पंडितों का पछिलगा, पतितों का टीका और पापियों का सिरमौर मानते और कहते हैं। वह केवल विनय के वशीभूत होकर नहीं, वरन यह उनका अत्यंत संवेदनशील और ईमानदार, पृष्ठ संख्या 48 आत्मनिरीक्षण है। कबीर, जायसी, सूर, तुलसी के कृतित्व में जो बड़प्पन आता है उसके पीछे यह सतत आत्मसंघर्ष एक बड़ा कारण है। यूं भक्ति सामाजिक संदर्भों में विदेशी आक्रमण के लिए प्रतिक्रिया है तो रचनाकार के आंतरिक संदर्भ में वह अहम के विस्फोट से बचाव की प्रक्रिया है। अहम से संघर्ष का ही यह परिणाम है कि तुलसी रामचरितमानस में बार बार आग्रह पूर्वक बताते हैं कि उनकी रचना स्वांतः सुखाए, आत्मतोष और आत्म प्रबोधन के लिए है। अर्थात जो रचना वे कर रहे हैं वह न किसी के निर्देश पर है और न किसी को उपदेश के लिए है। भक्त से उपदेशक की भूमिका में वे नहीं जाना चाहते। रचना में यदि उपदेश है तो वह राम कथा के अंतर्गत है, कवि की ओर से नहीं। कवि की ओर से तो एक ही उपदेश है राम कथा में अनुराग का। तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्त मूलतः दैवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद एक मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष कर्म में प्रवृत्त होता है। प्रभु की लीला और कवि की रचना ऐहिक मानवीय क्रियाएं हैं। जैसा कई बार व्यंग में कहा जाता है कि राम तो परब्रह्म के अवतार थे, चाहते उसी क्षण रावण को समाप्त कर सकते थे, पर उन्होंने नरचरित के रूप में ही रावण वध का निश्चय किया था। रचनाकार भी रचना कर्म के समय इस नरचरित में ही अपनी आस्था रख कर चलता है, उस समय उसका भक्त रूप पीछे हो जाता है। तुलसी ने जगह जगह इन परस्पर विरोधी भूमिकाओं में सामंजस्य स्थापित किया है। राम कथा में एक बुनियादी महत्व का स्थल है राम के प्रति कैकेयी की दृष्टि में परिवर्तन। इसी एक बिंदु से काव्य का कथानक नाटकीय मोड़ लेता है। सीता हरण, सुग्रीव से मैत्री, रावण वध आदि उसी से फिर निकलते हैं। यहाँ परंपरित वर्णन है कि देवताओं के अनुरोध पर सरस्वती ने कैकेयी की मति फेर दी थी। तुलसी ने इस वर्णन को स्वीकार किया है, गई गिरा मति फेरी कहकर। पर इतने से कवि को संतोष नहीं हुआ, इसके आगे वे अपनी ओर से नर चरित या कि यहाँ कहना चाहिए नारी चरित जोड़ते हैं, तब उनकी दृष्टि में कथा विकास विश्वसनीय बनता है। कैकेयी मंथरा संवाद, जिसकी बड़ी मार्मिक और काव्य शास्त्रीय व्याख्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने की है, अपने आप में तो एकदम सटीक और मनोवैज्ञानिक है ही, समूचे घटनाक्रम को एक मानवीय संदर्भ देना उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। यह तुलसी का बेजोड़ स्वभाव चित्रण है, जिससे गई गिरा मति फेरी का दैवी हस्तक्षेप अनावश्यक सिद्ध हो जाता है। मंथरा अपने जिस सहज कौशल से कैकेयी का राम के प्रति गहरा अनुराग वैसे ही तीखे द्वेष में बदल देती है, वह शत प्रतिशत मानवीय और ऐहिक है। यहाँ तुलसी के मानव मनोविज्ञान की परख घटनाक्रम को अप्रत्याशित मोड़ देती है, उनका भक्त रूप नहीं रचना का रूप उभर कर आता है। एक तुलना से बात और स्पष्ट हो सकेगी। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का पूरा कथानक दुर्वासा के शाप एक पूरी तरह अति प्राकृत तत्व पर टिका है। यदि यह शाप न होता तो नाटक का कथानक यूं आगे न बढ़ता। यह ठीक है कि जिस संसार में यह नाटक घटित हो रहा है उसमें देवी देवता और ऋषि मुनि हैं, जिनमें वरदान और अभिशाप की शक्तियां निहित हैं। उस संदर्भ में शाप का यूं दिया जाना अटपटा नहीं लगता, पर प्रणय व्यापार जैसे मानवीय क्रियाकलाप में इस शाप का प्रवेश नाटककार की क्षमता में कुछ जोड़ता नहीं। यहाँ तुलसी का रचनात्मक पौरुष अधिक स्पृहणीय दिखता है कि परंपरा से सुलभ कथानक के पृष्ठ संख्या 49। एक अति प्राकृत तत्व को सामान्य रूप में स्वीकार करके भी वे उसे परे रख देते हैं और कथानक के विकास के लिए एक शुद्ध मानवीय प्रसंग का आयोजन करके उसी को कथा का आवश्यक संदर्भ मानते हैं। अपने द्वारा निक्षिप्त अति प्राकृत तत्वों का भी अतिक्रमण कवि स्वयं जगह जगह करता है। अरण्य कांड में सीता हरण प्रसंग के पूर्व कवि ने दिखाया है कि राम के अनुरोध पर सीता आग में छिप जाती हैं। प्रभु पद धरी ही अनल समानी, और रावण वस्तुतः जिन सीता को हर ले जाता है वे नकली हैं, माया की सीता हैं। तब सामान्यतः सीता हरण के अवसर पर पाठक की प्रतिक्रिया कौतूहल की होनी चाहिए। ईश्वर में पूरी आस्था और मनुष्य का पूरा सम्मान, ये दोनों दृष्टियां तुलसी में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, जैसी उक्तियां इस गहरे आत्मविश्वास पर ही लिखी जा सकती हैं, जहां ईश्वर और मनुष्य दोनों की एक साथ प्रतिष्ठा हो। सिया राम यदि उनकी भक्ति के लिए आश्रय स्थल हैं तो सब जग उनके रचना कर्म के लिए। आलोचक को कभी कभी अटपटा लग सकता है कि बाबा कहे जाने वाले तुलसीदास मानव मन और रचना कर्म की इतनी सूक्ष्म गहराइयों तक पैठ कैसे और क्यों कर रखते हैं। अनुभूति और अभिव्यक्ति का जैसा संश्लिष्ट रूप रचना में वस्तुतः प्रत्याशित है, वह ईश्वर और मनुष्य की इस एक रूपता में से निकलता है। कला के आराध्य और संरक्षक भवानी शंकर जैसे संपृक्त और जल तथा वीच की तरह अभिन्न शब्द अर्थ की प्रकृति के मर्मज्ञ तुलसीदास रचना प्रक्रिया को एक वस्तु के रूप में स्वीकार करने वाले हिंदी कवियों में अग्रणी हैं। अभिव्यक्ति और काव्य भाषा के संकट की जैसी मार्मिक अनुभूति उनमें है, वैसी अन्यत्र कठिनाई से मिलेगी। विनय पत्रिका के एक पद में उनका निवेदन है, कहे बिनु रहो न परत, कहे राम रस न रहत। कहने और न कहने के बीच की यह द्विविधा रचना के उच्चतम स्तरों का साक्ष्य है। भक्त के आत्मनिवेदन और रचनाकार के संप्रेषण का दोहरा द्वंद कथन, अभिव्यंजन, मित कथन और मौन काव्य भाषा के सभी स्तरों को एक साथ खोलता है। ऐसे में भाषिक तनाव स्वभावतः अपने चरम पर पहुंच जाता है, जिसे साधना किसी भी बड़े कवि के लिए प्रेरणीय है। तन्मयता और वैदग्ध्य का यह विलक्षण योग है। तुलसी की पहुँच घर घर में है, या वे व्यापक समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, तो इसका मुख्य कारण यह है कि गृहस्थ जीवन और आत्मनिवेदन, इन दोनों अनुभव क्षेत्रों के वे बड़े कवि हैं। रामचरितमानस और विनय पत्रिका के युग्म में जैसे सब कुछ सिमट आया हो। गृहस्थ जीवन यूँ तो वर्णात्मक काव्य मात्रा में होगा, पर यह चित्रण संदर्भ और परिवेश के रूप में भी हो सकता है और स्वयं रचना के केंद्र में भी हो सकता है। हिंदी का कवि प्रायः दूसरे रूप को चुनता है। तुलसी इस बिरादरी के मुखिया हैं। प्रस्तुत अध्ययन के आरंभिक अंश में भारतीय मानस के द्विपक्षीय चरित्र की बात कही गई थी। तुलसी और सूर के रूप में वह स्थिति मध्यकालीन हिंदी काव्य में देखी जा सकती है। तुलसीराम का चरित्र चुनते हैं अपने लिए, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है और हर तरह से आदर्श के प्रतिरूप है। आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य, आदर्श मित्र, आदर्श भ्राता, सबसे अधिक आदर्श पति और फिर आदर्श शासक। सूर का पक्ष कृष्ण का है, जिन्हें लीला पुरुषोत्तम कहा गया, जो यथार्थ के हर पक्ष से निपटने को तैयार हैं, पूतना से लेकर दुर्योधन तक, और जिनका पति की अपेक्षा प्रेमी रूप अधिक चित्रित है। नंद यशोदा परिवार के वे केंद्र बिंदु हैं, पर अपनी गृहस्थी बसाते नहीं दिखाए गए। यहाँ स्मरणीय है कि तुलसी द्वारा चित्रित गृहस्थ जीवन रक्त संबंध पर आधारित है, जबकि सूर द्वारा अंकित गृहस्थ जीवन प्रेम संबंधों पर विकसित, पृष्ठ संख्या 50 है। यशोदा और नंद उनके वास्तविक माता पिता नहीं हैं, राधा प्रिया है पत्नी नहीं, द्रौपदी उनकी मित्र और आत्मीय है, बहन नहीं धर्म बहन की तरह। इस कवि युग्म के संबंध में एक रोचक बात यह भी है कि शिष्टाचार के नाते संक्षेप में ही सही अपने विशाल सूर सागर में सूरदास ने कुछ पद रामलीला के गाए हैं, और जैसे उसके उत्तर में उसी तरह कृष्ण लीला का कुछ गायन तुलसीदास ने किया है। पर क्योंकि तुलसी ने गृहस्थ जीवन के चित्रण का आदर्श रखा है, तो कबहूं कहूं यही रहनी रहोंगो की भावना से सतत आकुल समाज में लोकप्रियता का प्रतिमान उन्हें माना गया। गृहस्थ जीवन के ऐसे ही चितेरे मैथिली शरण गुप्त काव्य के क्षेत्र में और प्रेमचंद कथा के क्षेत्र में आधुनिक काल में लोकप्रिय हुए हैं।